हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध छठा अध्याय श्लोक संख्या 37। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते, गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासलि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंध छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद तथा व्यास देव का संवाद। श्लोक नंबर 37। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्य वीणां प्रणयन् ययौ यादृच्छिकौ मुनि एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्य वीणां प्रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनि एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्य वीणां प्रणयन् ययौ यादृच्छिकौ मुनि एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्य वीणां प्रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनि एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्य वीणां प्रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनि एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्य वीणां प्रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनि। शब्दों का अर्थ सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार संभाष्य संबोधित करके भगवान सर्वशक्तिमान नारद नारद मुनि वासवी सुतम वासवी अर्थात सत्यवती के सुतमद पुत्र को आमंत्रित बुलाकर वीणाम वीणा वाद्य यंत्र रणयन झनकृत करते हुए ययौ चला गया यादृच्छिकः जहाँ इच्छा हो वहाँ मुनि अर्थात महामुनि। अनुवाद सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार व्यास देव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झनकृत करते हुए वे इच्छा अनुसार विचरण करने लगे करने के लिए चले गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंग शक्ति से मोहित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में क्या कहा जाए। लेकिन नारद जैसा पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगा हो, ना केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अभी तो ब्रह्मांड के किसी भाग में तथा वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए उन्मुक्त है। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान जैसी ही है। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई बाध्यता है, और न कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी में यह न भी विकसित हो। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या हजार प्रयत्नों के बाद भी न प्राप्त हो सके। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। आज सूत गोस्वामी एक अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं। जब नारद मुनि ने अंत में बताया श्लोक नंबर 36 में, सर्वं तदिदम् आख्यातम् यत् पृष्टोऽहं त्वया नः, हे निष्पाप। सूत गोस्वामी ने बताया कि हे निष्पाप यास्तीर जी, आपने जो मुझसे पूछा था वो मैंने आपको बताया। जन्म कर्म रहस्यम में, मेरे जन्म और कर्म के जो रहस्य थे उनके विषय में आपको सब विस्तार से बताया। भवतश्चात्मतोषणम, और इसलिए बताया क्योंकि यही श्रवण करके आपकी आत्मा को संतोष प्राप्त होने वाला है। क्योंकि उनकी आत्मा बहुत दुखी थी ना, बोले थे मैं बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहा हूँ। तो अब बताया कि देखो, जब तक भगवान की कथा को नहीं सुनोगे, भगवान के भक्तों के साथ उनके जो रिलेशंस हैं, भगवान के भक्तों के साथ जो उनकी लीलाएं हैं, भगवान की प्रेम भरी लीलाओं को जब तक श्रवण नहीं करते, जब तक उनका बखान नहीं करते, तब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। तो नारद मुनि के ऊपर जो भगवान और भक्तों की कृपा हुई थी, वो श्रवण करने के बाद वो व्यास देव को कहते हैं कि ये सुनने के बाद आत्मा आपकी संतोष होगी। तुम्हारे आत्म संतोष के लिए यह लाभप्रद मैंने बताया आपको सब। और इसके बाद आज सूत गोस्वामी कह रहे हैं, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम, के वो नारद मुनि जो वासवी अर्थात सत्यवती के पुत्र, हमने सत्यवती के विषय में पढ़ा था कि शांतनु सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास जी हुए थे, और उनके विषय में बता रहे हैं आज सूत गोस्वामी कि नारद मुनि ने सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी को एवं संभाष्य इस प्रकार से कहा, इस प्रकार से मतलब संबोधित किया था, और अपने समस्त जन्म कर्मों की लीलाओं को बताने के बाद आमंत्र्य वीणायाम रण्यन रणयन, यानी कि इस तरह से फिर वो वीणा को रणयन मतलब झनकृत करते हुए नारद मुनि जब भी चलते हैं तो वो सदैव अपनी वीणा को झंकृत करते हैं और उनकी वीणा और उनकी सांसों से केवल भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण होता है। तो वो उसी तरह से जब भी वो मतलब बात करते हैं या जाते हैं, हर कदम पे वो सदैव यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं सूत गोस्वामी, आमंत्रिय वीणा वीणाम रणयन, और इस तरह से वीणा को झंकृत करते हुए ययौ चले गए। अब चले गए तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, अब कहाँ चले गए वो? और तो बताते हैं यदृच्छिको मुनि, यदृच्छिको मतलब जहाँ इच्छा हो वहाँ। अत्यंत ही सुंदर बात यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि नारद मुनि अपनी स्वतंत्रता से कहीं भी आ जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, और ये भौतिक प्रकृति का ऐसा प्रभाव है कि जनरली सब लोग यही सोचते हैं कि हम स्वतंत्रता से कार्य कर रहे हैं। ऑफिस का जो बॉस होता है वो क्या सोचता है, मैं स्वतंत्र हूँ और सारे लोग मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। घर की मालकिन क्या सोचती है, मैं स्वतंत्र हूँ और घर में जो मेरे नौकर हैं वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, मेरा पति मेरी आज्ञा के अनुसार चलता है, मेरे बच्चे हर कोई मेरी आज्ञा मानते हैं, मतलब मैं स्वतंत्र हूँ। पति क्या सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ और पत्नी मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, और सब मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, मम्मी पापा मेरी बात। ये एक भौतिक प्रकृति की गुमराही है कि जीव हर समय सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, अगर स्वतंत्र नहीं है तो वो क्या सोचता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, ये इच्छा है। ये इच्छा क्यों है, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, ये उसका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है, ये नेचुरल है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है इसलिए उसे स्वतंत्रता चाहिए, वो सदैव सीकर उसके लिए स्वतंत्रता के लिए सदैव इच्छा करता हो। इस संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ये जीव का भ्रम है कि वो स्वतंत्र है, क्योंकि आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मानता है लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। ये तो हमारा एक भ्रम है कि हम स्वतंत्र हैं। एक ऑफिस का मालिक है, वो सोच रहा है मैं स्वतंत्र हूँ, सब मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, मगर वो ये स्वयं को नहीं देख रहा है कि मैं गधे की तरह सुबह सवेरे उठता हूँ, रात को घर पे पहुँचता हूँ और सारा दिन मैं केवल बंधन में होता हूँ, कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। इवन कुछ कुछ इतने बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, डायमंड मार्केट के बहुत सारे व्यापारी होते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास धन होता है, गोल्ड की दुकान होती है, लेकिन वो एक सेकंड के लिए भी अपने शॉप से उतरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है कि फिर जो मैं, क्योंकि एक जरा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो कितना सारा लॉस हो जाएगा। तो वो स्वतंत्र कैसे हुए, वो तो सुबह से लेकर रात तक बंधन में होते हैं, लेकिन ये भौतिक बहिरंगा शक्ति, जो भौतिक प्रकृति है, उसका ये प्रभाव है कि वो मोहित कर देती है जीव को और उसे स्वतंत्रता महसूस कराती कि तुम स्वतंत्र हो। लेकिन भक्तों, वास्तव में जीव को स्वतंत्रता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि वो भगवान की दिव्य सेवा को स्वीकार नहीं करता। भगवान की दिव्य सेवा से ही वास्तव में जीव को स्वतंत्रता प्राप्त होती। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब हम शरण ग्रहण करते हैं, जब हम शरण ग्रहण करते, शरण ग्रहण का क्या मतलब है कि भक्त अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग करेगा, जो भौतिक शरीर की इच्छाएं हैं, जो मन बुद्धि अहंकार, हमारे सूक्ष्म शरीर की भी समस्त इच्छाओं का, हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अपने अहंकार का परित्याग करेगा और हर एक चीज, शास्त्र तो यहाँ तक कहता है मानस देह गेह जो किछु मेरा अर्पिल तो वह पद नंद किशोर, कि सब कुछ जब भगवान को समर्पित करना है जब भक्त जो है वो जब कृष्ण कॉन्शियस में आता है तब कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके जीवन में, हर एक कदम पर वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ जी रहा है, मतलब तो फिर क्या हुआ, मतलब स्वतंत्रता कहाँ है। जबकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त हो सकती। सेवा का क्या मतलब होता है, जैसे स्लेवरी हम क्या समझते हैं कि वो अब मजदूर बन गया, सेवा करनी है उसको सुबह से लेकर रात तक। भक्ति का जीवन मतलब सेवा का जीवन। गोपी भरता पद कमल दास दास दासानो दास, उनकी सेवा करनी है, उनके दासों की सेवा करनी है, उनके दासों की सेवा करनी है, दासों के दासों की सेवा करनी है, जीवन सेवा में बिताना है। तो फिर यहाँ पर स्वतंत्रता का प्रश्न कहाँ से उठता है, जबकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में भक्तों हमें स्वतंत्रता का सही अर्थ समझना पड़ेगा। भगवान बताते हैं 2.45 में, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुना, कि इस संसार में सारे लोग तीनों गुणों के अर्थात इस भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनके अधीन होकर कार्य करते हैं, और आपको क्या करना है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। क्योंकि सतोगुण में रहकर कार्य करोगे तो बंधन मिलेगा, रजोगुण में रहकर कार्य करोगे तो बंधन मिलेगा, तमोगुण में रहकर कार्य करोगे तो बंधन मिलेगा, और जहां बंधन है वहां स्वतंत्रता कहां से आएगी। तो हम जब इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर कार्य करेंगे, जो केवल एकमात्र कार्य क्या है, भगवान की भक्ति। और ये कब करेंगे, जब हम अपनी वास्तविकता को पहचानेंगे। वास्तव में भक्तों भक्ति का क्या मतलब होता है कि आपको कोई अभिलाषा नहीं करनी, इच्छा करने की आपके पास स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब फिर यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावर्ता, जब मैं कोई इच्छा तक नहीं कर सकता तो कहाँ स्वतंत्रता। समझने का प्रयास करेंगे, यदि यह बात समझ में आ गई तो जीना बहुत सरल हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में हम जो भी इच्छा कर रहे हैं, जो भी कामना कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस भौतिक शरीर के अंदर बंधन में बंधे हुए हैं। हम जो भी इच्छा कर रहे हैं वो इस शरीर से रिलेटेड है ना। जो भी कर रहे हैं संसार में, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है, जो भी इच्छा कर रहा है, वो इस शरीर से रिलेटेड है। तो क्योंकि आत्मा इस शरीर के बंधन में बंधी हुई है इसलिए वो इस तरह की इच्छा कर रही है। लेकिन अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी इस भौतिक शरीर की समस्त अभिलाषाओं को छोड़कर ज्ञान कर्माद्यनवर्तन, समस्त ज्ञान और कर्म की समस्त बंधनों को छोड़कर जब जीव अपनी वास्तविक स्टेज पर आता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, मैं अपनी वास्तविक स्टेज। अभी बंधन क्यों है, स्वतंत्रता का मतलब होता है आपको अपनी वास्तविक स्टेज प्राप्त हो जाए। अभी आप जिस स्टेज में अपने आप को सोच रहे हो वो स्टेज बंधन है। बंधन हम सोच रहे हैं कि इस ग्रोस बॉडी के साथ मुझे स्वतंत्रता प्राप्त हो, जबकि पता ही नहीं है कि ये सबसे बड़ा, ये शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा बंधन है। क्योंकि ये शरीर में जब तक है तो इस शरीर के लिए ही हमें कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन जब जीव इस शरीर में रहकर अपने आप की आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, अपनी रियलिटी को जानता है, तब वो वास्तविक स्टेज पर आता है। और जब जीव अपनी वास्तविक स्थिति को समझने लगता है तब से स्वतंत्रता का पहला कदम होता है। तो वो कब होता है, जब जीव भगवान की भक्ति स्टार्ट करता है, भगवान की दिव्य सेवा स्टार्ट करता है। क्यों, क्योंकि प्रेम जो होता है ना, जीव का एकमात्र धर्म है प्रेम करना। धर्म मतलब किसी वस्तु की वो क्वालिटी जो किसी भी सूरत में उससे दूर ना की जा सके। जैसे हम अक्सर एग्जांपल देते हैं, जैसे चीनी का धर्म है मीठा होना और सॉल्ट का धर्म है खारा होना, उसी तरह से आत्मा का धर्म है प्रेम करना। वो प्रेम किए बगैर रह नहीं सकते। तो क्योंकि वो अभी बंधन में है, इसलिए वो वही कार्य कर रही है, प्रेम ही कर रही है परंतु भौतिक वस्तुओं से, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही, क्योंकि अब भौतिक प्रकृति का ये प्रभाव है कि वो अपनी वास्तविकता को भूल गई है, तो भौतिक वस्तुओं से प्रेम करके वो समझ रही है कि इसमें यदि मैं आनंद प्राप्त करूंगी, लेकिन आनंद तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि स्वतंत्र नहीं हो, और स्वतंत्रता क्या है, तुम वास्तविक स्थिति में आकर उससे प्रेम करो जो कि वास्तविक में तुम्हारा प्रेमी है, जिससे प्रेम करके तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस भौतिक जगत में हम बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में आकर जो भी कार्य कर रहे हैं, वास्तव में हमारा अपना नेचर है, लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक प्रकृति के बंधन में हैं, इसलिए इसने क्योंकि अब मोहग्रस्त हो गए हैं, क्योंकि भौतिक बहिरंगा शक्ति हमें मोहित कर देती है, तो वही कार्य हम कर रहे होते हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे होते हैं। जैसे अब जीव की संतुष्टि होती है खाना खाने से, ठीक है, तो खाना अगर वो खाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, तो उसे संतुष्टि प्राप्त होगी, लेकिन अगर वो खाना मुंह की बजाय आंखों के अंदर डालेगा तो क्या होगा, फिर तकलीफ होगी, है ना। उसी तरह से क्योंकि अब उसे ज्ञान नहीं है, वो समझ रहा है कि आंखों को खिलाने से मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी, तो वो आंखों को खिलाकर संतुष्ट होना चाहता है। उसी तरह से जीव का अब खाना खाना उसका स्वभाव है, वो उससे नहीं छोड़ा जा सकता, वो उससे नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि संतुष्टि प्राप्त होने वाली उसी से। इसी तरह से जीव को प्रेम से, प्रेम करने से दूर नहीं किया जा सकता। अब प्रेम का मतलब भी हम समझते हैं, प्रेम का मतलब होता है तत्सुख सुखित्वम। ये जो प्रेम हम भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके समझते हैं कि ये मुझे, ये मेरा प्रेमी, यदि ये चीजें मुझे वैलेंटाइन पे गिफ्ट देगा, एक मोबाइल देगा, और है ना हर प्रोग्राम में मुझे एक ड्रेस या एक साड़ी लेकर देगा, या फिर ये लेकर देगा, तो मतलब वो मुझसे प्रेम करता है। हर रोज मुझे आई लव यू के 15-20 मैसेजेस छोड़ेगा, और है ना ये अलग अलग स्टाइल में जो भी प्रेम, ये जो समझ रहे हैं ये प्रेम नहीं होता है। ये बात को हमें अपने मन से निकाल देना होगा, क्योंकि वास्तविक प्रेम का मतलब है तत् सुख सुखित्वम। प्रेम मतलब प्रेमी को सुखी देखकर आप संतुष्ट हो जाओ, बस। प्रेमी का, प्रेम का केवल एक अर्थ है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई अर्थ अगर हम समझते हैं तो समझो हम प्रेम को समझे ही नहीं। प्रेम तो किया है गोपियों ने, कभी चाहा नहीं कृष्ण से, एक बार बोला नहीं कि कृष्ण एक बार तो वापस आ जाओ, सदैव मेरे कृष्ण को अच्छा लगता है तो ठीक है, भले वो मथुरा में रहे, लेकिन हम सदैव उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। प्रेम का मतलब होता है कि आप अपने प्रेमी को संतुष्ट करने के लिए करोड़ों जन्मों तक नरक में भी बैठने के लिए तैयार हो। प्रेम का मतलब ये नहीं कि वो मुझे सुखी कर रहा है तभी मैं उसे प्रेम करूंगी, मुझे सुख मिले। चैतन्य महाप्रभु प्रेम की बड़ी बड़ी विचित्र परिभाषा बताते हैं। वे कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्ट माम अदर्शनम, मर्म हताम करो तो वा यथा तथा वा विद्धा तुम लंपट। तुम लंपट हो, तुम्हारी मर्जी है, जो करो, मुझे प्रेम करो या अपने पैरों से कुचल कर मेरा हृदय तोड़ दो, परंतु मेरा स्वभाव है मैं तुम्हें प्रेम किए बगैर नहीं रह सकता। तो आत्मा का नित्य स्वभाव है प्रेम करना, और वो वही आत्मा जो क्योंकि नित्य है, इटर्नल है, तो उस इटर्नल से ही प्रेम करके, शाश्वत जो भगवान है उससे प्रेम करके ही उसे आनंद प्राप्त हो सकता है। उसके अतिरिक्त उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आत्मा जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं करती, और प्रेम का मतलब कहाँ से पता चलेगा, अगर मैं बोलूं कि ठीक है मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो इसका कैसे पता चलेगा, क्या प्रूफ है कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, या प्रूफ देना होगा ना। अगर हम बोल रहे हैं प्रेम, तो प्रेम साबित होता है सेवा से। इस भौतिक जगत में भी देखें, अगर हम भगवान के बाद किसी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो माता और संतान की। एक माता जब से, जिस दिन से संतान कोख में आती है और जिस दिन से उसने जन्म लिया होता है, वो केवल और केवल उसके लिए जीती है, सदैव उसकी सेवा करती है, आधी रात तक जागती रहती है कि कब मेरा बच्चा सोएगा, और बार बार देख रही होती है कि वो जागा तो नहीं, कहीं वो गीला तो नहीं हो गया, उसने खाया नहीं खाया कुछ भी, वो किसी भी चीज में तब तक इंजॉय नहीं कर पाती है जब तक कि उसका बच्चा सुखी ना हो। उसी तरह से प्रेम का मतलब होता है कि उसकी सेवा, कंटिन्यू सेवा करो। और अगर हम भगवान के, भगवान से प्रेम करते हैं तो प्रेमी संतुष्ट होता है। ऐसा नहीं कि सेवा करने के टाइम पर एक माँ सोच रही कि मैं कितनी बंधन में आ गई हूँ, जब से ये पैदा हुआ है तब से मैं और कोई अपनी जीव, मेरा अपना जीवन जो है वो ही है ना, समझो मैंने सेक्रीफाई कर दिया। अगर जीव सोचता भी है यदि, तो वो भी स्वाभाविक है क्योंकि ये भौतिक रिश्ते जो है वो इटर्नल नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कभी कभी कि हम इन बंधनों में फंस गए हैं। और हम वास्तविक भक्त को अक्सर लगता है, जो भक्त होते हैं उनकी अगर ऐसा होता है, भौतिक लोगों को तो बहुत आसक्ति होती है अपनी संतान में या फिर इस तरह, लेकिन जो भक्त होते हैं वो अक्सर सोचते हैं कि मेरा समय इतना जाया होता है, अब मैं इतना सारा समय मुझे संतान को देना पड़ता है और भगवान के लिए मैं बहुत कम समय निकालती हूँ। लेकिन वो उनकी भी सेवा करता है क्योंकि भगवान ने कहा है कि आपको अपने नियत कर्म पूरे करने हैं, तो वो सेवा भी भगवान की सेवा समझ कर ही करता है। तब वो संतुष्ट होता है कि भाई भगवान ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है तो मुझे ये भी पूरी करनी है। लेकिन भक्ति का अल्टीमेटली मतलब क्या है? सेवा करना, और सेवा करके ही उसको सुखी होना है। जीव तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो भगवान की दिव्य सेवा स्वीकार नहीं करता। और दिव्य सेवा हर वो कार्य है जो हम ये सोचते हैं कि मैं भगवान की सेवा, मतलब मेंटली अगर हम इस, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद्गीता 3.9 में भगवान बताते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। अगर तुम यज्ञ के अर्थ के लिए कार्य नहीं करते हो फिर तुम भले संसार में जो भी कार्य करो, यज्ञ अर्थ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, कुछ भी करो भले कितना ही वो बहुत ही पवित्र कार्य कर रहे हो, आप कोई यज्ञ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, दान कर रहे हो, यदि वो उसके अंदर भगवान को संतुष्ट करने के अलावा अगर कोई और इच्छा है तुम्हारी, लोकोयम कर्म बंधना, और तभी तुम कर्म के बंधन में फंसोगे। और आगे भगवान कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि कार्य करेंगे मुक्त संग समाचर, तो हम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में भक्तों, भक्त की शरणागति होने की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है भगवान बताते हैं 2.9.22 में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यदि अनन्य चित से केवल ये यो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरी भक्ति करते अनन्य चेतना के साथ, यदि वो मेरा स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, उनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ? विभक्ति का मतलब है हर समय भगवान को स्मरण करना, हर समय भगवान के लिए अपना एक एक क्षण भगवान को समर्पित करना। पूर्णतया समर्पित करने के बाद भगवान कहते हैं तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम ऐसा करो उसके बाद तुम्हारी सारी जो जिम्मेदारी है, तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैं पूरी करूंगा, और तुम्हारे समस्त कर्मों के बंधन से, सारे कर्मों के रिएक्शन से तुम्हें, तुम्हारी मुक्ति की जिम्मेदारी मैं लूंगा। अभी जब हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता की बात चल रही है, तो कृष्ण की शरण ग्रहण करने के बाद, भक्त शरणागति होने के बाद समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब उसे ना किसी भौतिक प्रकृति का बंधन लगेगा और ना ही अपने कर्मों के रिएक्शन का बंधन लगेगा। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जब वास्तविक स्वतंत्रता यही है कि आप भौतिक गुणों के बंधन से मुक्ति प्राप्त करो और समस्त कर्मों के फल के बंधन से आप मुक्ति प्राप्त करो, तभी संभव है जब हम पूरी शरणागति के साथ भगवान को समर्पित करेंगे, अपने समस्त भौतिक देह जिसके अंदर हम कैद हैं, उसकी समस्त कामनाओं, उनकी समस्त अभिलाषाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना, ये स्वतंत्रता है। इस भौतिक प्रकृति के बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त हम सोच रहे हैं कि हम बंधन में बंध जाते हैं। जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तब हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में वो स्वतंत्रता है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। उसी से आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। सवै पुंसाम पवो धर्मो यतुर भक्ति यदोक्षसि। वास्तविक जो हमारी परा प्रकृति यानी हमारी आत्मा, उसका एक ही धर्म है कि वो भगवान की भक्ति करे। उसके अतिरिक्त उसे किसी भी और वस्तु में आनंद आ ही नहीं सकता। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो स्वतंत्रता कैसे होती है कि समस्त कर्मों के रिएक्शन से हमें मुक्ति मिल जाती है। और समस्त उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यम, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। मैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें किसी चीज के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी उठाने वाला स्वयं जगत का नाथ है। वो कह रहा है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें जो चाहिए योग माना जिस चीज की भी आवश्यकता होगी वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, और शेम यानी जो तुम्हारे पास होगी उसकी मैं रक्षा करूंगा। किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी भक्त को, कोई चीज का डर नहीं लगे। हम जानते हैं कि जब हम कृष्ण कॉन्शियस में नहीं होते हैं जो लोग, तो उन्हें हर वक्त अपने भविष्य का एक डर लगा रहता है कि क्या ऐसा ना हो जाए, चिंता लगी रहती है कि। लेकिन जब भक्त बनता है कोई, वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करता है पूरी श्रद्धा के साथ, तो उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। चिंता होती है तो केवल एक ही चिंता होती है कि मेरी साधना टूटनी नहीं चाहिए, मेरी साधना सही हो। बस सुबह से लेकर भक्त रात को सोते वक्त यही सोचता है कि मुझे सुबह अपनी साधना के लिए उठना है, और पूरा दिन यही चलता है कि मेरी जो भी काम कर रहा है, मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा श्रवण कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा जप भी अभी कंप्लीट करना है, मुझे समरी देनी है, मुझे श्लोक रिसाइट करना है, मुझे भगवान की ड्रेसिंग करनी है, मुझे भगवान के लिए भोग बनाना है, मतलब और भौतिक करोड़ों इतनी इच्छाएं, इतनी टेंशन होती है, मानसिक तनाव हमें दूसरे लोग से जब हम पूछते हैं तो उनका माइंड इतना डिस्टर्ब होता है कि हम भक्त को वो बात समझ में ही नहीं आती है कि इतनी डिस्टर्बेंस कैसे जीवन में। लेकिन क्योंकि भक्त पूरा सरेंडर है भगवान को, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के बाद वो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, समस्त चिंता से मुक्त हो जाता है, उसे कोई डर भी नहीं रहता, एकदम फ्री होता है। भक्त को नरक का डर नहीं होता, भक्त को यमदूत का डर नहीं होता, भक्त को मरने का डर नहीं होता है। डर होता है सिर्फ इसका कि मैं किसी तरह से भगवान से एक क्षण के लिए भी दूर ना हो जाऊं। केवल वो अपने मंत्र, अपने महामंत्र और अपने भगवान के पवित्र नाम को सदैव, बस बस एक ही डर होता है कि मैं इस नाम से दूर ना हो जाऊं। कोई उस, और अगर भगवान का पवित्र नाम उसके साथ है, बड़े से बड़ी आपत्ति उसके ऊपर आ जाए जीवन में, बड़ी से बड़ी गड़बड़ हो जाए जिंदगी में, लेकिन उसके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अवश्य रक्षिप हो कृष्ण, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं जानता हूँ, भले ही मैं अपराधी हूँ लेकिन मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, कृष्ण मेरी सहायता अवश्य करेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर हम भक्ति में नहीं होते हैं तो जितने भी ज्ञानी हैं और जितने भी कर्मी हैं वो किस पर, क्योंकि भक्त का पूरा डिपेंड किसके ऊपर होता है, भगवान के ऊपर। उसका पूरा का पूरा वो शरणागति होता है, वो पूरा भगवान को सरेंडर होता है। लेकिन ज्ञानी और कर्मी जो है उनकी अपनी क्षमता के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर उनको भरोसा होता है। तो ज्ञानी और कर्मी अक्सर डिप्रेस हो जाते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं। कभी कभी तो जो भौतिक व्यक्ति होते हैं वो तो सुसाइड कर लेते हैं अपनी भौतिक इन दुखों से परेशान होकर। लेकिन भक्त को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होता है। क्यों? क्योंकि वो हृदय से केवल भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है, और उसका हृदय इतना प्रसन्न होता है, उसे इतनी श्रद्धा होती है अपने भगवान के ऊपर। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय। वो अपने अंदर एक विश्वास को पालता है। जिस दिन से भक्त भगवान की भक्ति करना शुरू करता है उस दिन से एक विश्वास उसके हृदय के अंदर पनपने लगता है, और वो हृदय के अंदर धीरे धीरे श्रवण के साथ और भगवान के पवित्र नाम के जप करने के साथ साथ वो इतना विश्वास जो है वो इतना दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसके सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत्ता हुए, बस मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा हूँ, भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहा हूँ, भगवान ने जो मुझे ड्यूटीज दी हैं उनको नियत कर्मों को कर रहा हूँ, तो सर्व कर्म कृत्ता हुए। उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि वही भक्ति जो है, ये कृष्ण प्रेम जो है वो मुझे हमेशा मेरी रक्षा करेगा। और उसे अपने भगवान के ऊपर इतना विश्वास होता है क्योंकि उसका हृदय प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अगर आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर कार्य करते हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, अगर आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर कार्य कर रहे हो तो आपको किसी भी चीज का भय करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको भय चिंता डर और प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप अपनी स्वाभाविक स्थिति से हटकर कार्य करते हो। एक स्टूडेंट की तरह कार्य करेगा तो कोई भी टीचर आ जाए, भले कितना भी खतरनाक टीचर आ जाए, वो उसको कुछ भी नहीं डांटेगा। लेकिन एक स्टूडेंट अगर क्लास में स्टूडेंट के अलावा और कोई गलत हरकत कर रहा है, कोई बिहेवियर कर रहा है, तब वो उसको आके टीचर डांटेगा। बच्चा अगर अपनी बच्चा है वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर कार्य करेगा तो कभी डर नहीं लगेगा उसको, माता आ जाए, पिता आ जाए, दादा आ जाए, वो पता है। लेकिन वो बच्चा अगर अपनी फ्रीडम का मिसयूज कर रहा है और वो और कोई कार्य कर रहा है तो फिर उसे डर लगेगा, कहीं पप्पा ना आ जाए, कहीं मम्मी ना आ जाए। उसी तरह से पति भी, हर कोई पत्नी अगर स्वाभाविक अपनी पति धर्म का पालन कर रही है तो उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो आज्ञा का पालन नहीं कर रही है और अपनी मर्जी से कोई और कार्य कर रही है तो उसे डर लगेगा। उसी तरह जीव आत्मा संतुष्ट तभी होगी जब तक वो अपना स्वाभाविक कार्य करेगी, और उसका स्वाभाविक कार्य केवल और केवल जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है, यदि वो करता है तो समझो स्वतंत्र है, और इसके अतिरिक्त और कोई भी कार्य कर रहा है तो समझो वो कभी भी बंधन, वो सदैव बंधन में है, कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाते हैं कि जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में क्या कहा जाए। संसार में भी यदि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वीसा पासपोर्ट चाहिए होता है और कुछ बहुत सारी। लेकिन अगर हम इस भौतिक जगत में ही नहीं कर सकते स्वतंत्रता से विचरण तो फिर आध्यात्मिक जगत में कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये भौतिक जगत में हमारी बात और यहाँ पर नारद मुनि की बात हो रही है, या नारद मुनि क्या कर रहे हैं, ये यादृच छिको मुनि, वो अपनी इच्छा के द्वारा चले गए। नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे रहते हैं, ना केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है अभी तो ब्रह्मांड के किसी भी भाग में तथा वैकुंठ में किसी भी भाग में विचरण करने के लिए उन्मुक्त है। उनको कोई ये जो भगवान की शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं अर्जुन, वो सह शरीर स्वर्ग में चले गए इंद्र के साथ, इंद्र से गए विद्या वगैरह सीखी और वापस आ गए। तो ये सह शरीर हम, हमारा ये भौतिक शरीर और भक्तों का भौतिक शरीर, उसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि वो भगवान के साथ इतने ज्यादा मिले हुए होते हैं कि उसके अंदर भी भगवान जैसे गुण आ जाते हैं। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम ऐसे भक्तों की स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर भगवान जैसे ही गुण हैं। जैसे अक्सर एक एग्जांपल दी जाती है मैग्निक और प्लेट की। अब एक मैग्निक होता है, उसके पीछे अगर हम लोहे की प्लेट लगाते हैं तो क्या होता है, वो भी मैग्निक जैसा पावर आ जाता है उसके अंदर भी, वो भी चपकने लगता है। उसी तरह से जब भगवान की दिव्य सेवा में कोई भक्त लगता है तो उसके अंदर भी भगवान जैसे गुण आने लगते हैं। तो इस तरह से जैसे भगवान हर जगह पर स्वतंत्र विचरण कर सकता है, उसी तरह नारद जैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे भौतिक कर्मी लोग होते हैं वो इसी संसार में भी एक दूसरी जगह पर स्वतंत्रता से नहीं आ जा सकते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि उनके विचरण का कोई कारण है ना कोई बाध्या। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने इस भौतिक आनंद के लिए इधर उधर जाना चाहते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रवीज कार्य आचार्य, उनके विचरण करने का केवल एक ही कारण होता है कि वो भगवान का संदेश प्रसारित करना चाहते हैं, और इसलिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता विचरण करने से। जैसे हम जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी इतनी वृद्ध आयु में पूरे संसार में कितनी दफा ना उन्होंने भ्रमण किया, भगवान का उपदेश दिया। तो ये दिव्य क्वालिटी आ जाती है जब हम भगवान की भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, तो फिर कोई भी बड़े से बड़ी बाधा भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। और अंत में जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है वो बहुत ही मुख्य बात है, समझने के लिए हमें बहुत पूरी कोशिश करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि इसी प्रकार भक्ति की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है, यानी कि भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। बाकी जो भी आपको संसार में मिलता है, जो कुछ भी मिला है, पहले पिता का घर मिला, माता पिता भाई बहन पति पत्नी और घर गाड़ी बंगलो, जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके कर्मों के अनुसार मिला। इवन आज आपने जो दोपहर को खाना खाया वो भी आपको कर्म थे, आपको इसलिए खाया, और अगर अभी तक नहीं खाया है तो आपके कर्मों के अनुसार वो आपके कर्म में लिखा हुआ नहीं, इसलिए आपको नहीं मिला। जो कुछ भी मिल रहा है आपको वो सब का सब आपके कर्मों के अनुसार, लेकिन भक्ति की दिव्य पद्धति स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव अगर किसी भौतिक ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पर कोई भक्त नहीं है तो उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, यानी कि अगर उसके भक्ति नसीब से नहीं मिलती। भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, भक्ति केवल आपके इच्छा मात्र से मिलती, दो जगह से मिलती है भक्ति। कोई लोग को कर्मों से भी मिल जाती है, जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो भक्त होते हैं उनको दोबारा से भक्तों के घर में जन्म मिलता है, ताकि भक्तों के घर में जन्म मिलना एक अलग बात है लेकिन भक्ति मिलना एक अलग बात है। अमीर का घर में जन्म लेना एक अलग बात है, भले ही अपने शुभ कार्यों की वजह से या भक्ति में इनकम्प्लीट करने की वजह से भक्त के घर में जन्म ले लिया, लेकिन वो एक अलग बात है। आज अगर तुम भक्त हो वो एक अलग बात है, वो केवल केवल शुद्ध भक्तों के सानिध्य से प्राप्त होता है। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं हमारे भाग्य में है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होने वाले। जैसे हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 5 में श्लोक नंबर 18 में, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीरहम् सा, कि जिस प्रकार दुख हमारे नसीब का होता है, हम ना चाहते हुए भी दुखों को नहीं हटा सकते कि भाई नहीं अभी मुझे दुख नहीं चाहिए, नहीं भाई मुझे दुख चाहिए नहीं, लेकिन हमारे नसीब का है तो हमें कैसे ना कैसे करके मिलेगा। उसी तरह से हमारे नसीब का सुख भी अगर हमारे कर्मों के अनुसार है तो वो आके मिलेगा, वो बाध्य है वो सुख और दुख आप तक पहुंचने। वो कर्म जो है वो लटक रहे होते हैं ऊपर कि कब मैं इसको अपना फल प्रदान कर दूं जिसका जो इसने कार्य किया। परंतु यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्ति की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है, मतलब वो सबसे बड़ा चीटर है, सबसे बड़ा धूर्त है जो ये कहता है कि भक्ति मेरे भाग्य में नहीं है। क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि भक्ति स्वतंत्र है, वो आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन श्री प्रभुपाद ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी, संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी में यह न भी विकसित हो। यानी ऐसा पॉसिबल भी है कि आप बहुत सारी कोशिश करो लेकिन फिर भी आपको ना मिले, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है तो हो सकता है मुझे मिले भी, मैं कोशिश करूं, ये सोचकर ये नहीं सोचना चाहिए भले फिर हो सकता है मिलेगी नहीं तो फिर कोशिश करूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, वो कर्मों से तो नहीं मिल रही है, वो आपके प्रयास से नहीं मिल रही है भले, लेकिन वो कर्मों से भी नहीं मिल रही है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु बताते भक्ति मिलती है ब्रह्मांड ब्रह्मयते कौन भाग्यवान जीव, कि करोड़ों करोड़ों जीव ये ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, कभी कुत्ता बिल्ली सुअर रीछ और गटर का कीड़ा और पता नहीं क्या क्या बनते हैं, और उनमें से भाग्यवान होता है जो गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता है बीज, जो गुरु और कृष्ण की कृपा जब एक साथ होती है, जब कृष्ण कृपा करते हैं तो गुरु मिलता है और जब गुरु कृपा करते हैं तो कृष्ण मिलता है, कितनी विचित्र बात है। फिर हमें ऐसा लगेगा पहले किसकी कृपा प्राप्त करूं, कृष्ण कृपा करेंगे तो गुरु मिलेगा, अभी कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए तो पहले गुरु चाहिए, लेकिन वास्तव में भक्तों ये सब हमारी सिंसियरिटी, जितना हम सिंसियर होंगे, सिंसियरिटी और सीरियस हम होंगे, अपनी इच्छा हमारी दृढ़ होगी। जैसे भगवान बताते यो यो याम याम तनम भक्त्या श्रद्धयार्थे तुम इच्छति। यदि हम श्रद्धा और सिंसियरिटी के साथ भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान अवश्य कोई ऐसा माध्यम बनाएंगे। भगवान प्रेम करते हैं बहुत अपने बच्चों से, लेकिन वो स्वतंत्र छोड़ते हैं कि मैं प्रेम क्या करता हूँ, तो इसका मतलब ये संसार में जो प्रेम करता है वो क्या चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तुम चलो चलो। जैसे पति बोलता है जैसे मेरी इच्छा है वैसे तुम्हें चलना है, माँ अपने बच्चों को बोलती जैसे मैंने सोचा है, मैंने प्लानिंग किया उसी तरह से तुम्हें अपना लाइफ को सर्वाइव करना। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तो कृष्ण ने दी है, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम चाहो तो मुझे प्रेम करो, चाहो तो मत करो, अपने किसी के साथ भी प्रेम करोगे यो यो याम याम तनम भक्त श्रद्धयासि तुम इच्छति तस्य तस्य चला सजा तामेव विदयाम्यहम। ना केवल मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ परंतु प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, तुम्हें वो सारी सुविधाएं भी प्रदान करूंगा जिससे प्रेम करना है जाओ करो। मैं तुम्हें तो इवन देवताओं की पूजा करना चाहोगे तो मैं उस देवता के प्रति भी तुम्हारी श्रद्धा को विकसित कर दूंगा। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम्हारे भले को चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुम सारे काम छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन फिर भी उसी में तुम्हारा भला, लेकिन फिर भी तुम्हारी जैसी इच्छा होगी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम चाहे अगर एक खटमल भी बन जाओगे फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, अगर एक मच्छर भी बन जाओगे तो भी तुम्हारे हृदय में परमात्मा बनकर रहूंगा, और सदैव इस आशा के साथ तुम्हारी ओर निहारूंगा कि कभी तुम अपनी इस बहिरंगा शक्ति के साथ जो मोहग्रस्त हो गए हो, उस मोह से इल्यूजन से हटकर आप मेरी ओर अपनी दृष्टि जमा हो ताकि तुम्हें वास्तविक आनंद प्राप्त हो। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसी तरह भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगी। आपकी आप कितना ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कितना अपने समय को निकाल रहे हो भक्तों की संगति के लिए, कितना सीरियस हो, कितना सिंसियर हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को या प्राप्त हो या हजार प्रयत्नों के बाद भी ना प्राप्त, यानी प्रयत्न से ज्यादा आपकी सिंसियरिटी की आवश्यकता है। कोशिश करें कि हाँ ठीक है उधर आ रहे भक्त तो चले जाए, लेकिन जितना सिंसियर होंगे, प्रेम और श्रद्धा रखेंगे, भगवान अवश्य हमें अवसर प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं की जा सकती। अगर आपको बाध्य कर दिया जाए ना, भगवान अगर बाध्य करते, बाई फोर्स आपको कहते नहीं तुम मेरी भक्ति करो, तो वो भक्ति नहीं हो सकती बेटा। वो भक्ति नहीं होती है जो बाध्य करके कराई जाती है। प्रेम वो होता है जो स्वतंत्रता से किया जाए। तुम करोड़ों की भीड़ में एक को सुनो कि मुझे तुमसे प्रेम करना है, तभी तो भगवान ने 33 करोड़ देवी देवता बनाए। इतने सारे भीड़ पैगंबर के देखता हूँ कि मुझसे कौन प्रेम करता है। अगर एक ही कृष्ण होता तो स्वतंत्रता कहाँ रहती, हमें मजबूरन उसी से प्यार करना पड़ता। लेकिन आज भगवान ने बहुत सारी वैरायटीज हमें दी है, बहुत सारी चीजें हैं प्रेम करने के लिए, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता दी है कि जब तुम्हारा दिल भर जाएगा और तुम्हें लगेगा कि कृष्ण को प्रेम किए बगैर मुझे कभी भी आनंद नहीं आएगा, तभी तुम आना मेरे पास। तो स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी वापस से बता रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान की शरणागति करके आप बाउंड हो जाओगे। गुरु के माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। वास्तविक स्वतंत्रता क्या है कि आप अपने वास्तविक स्थिति में आकर अपना वास्तविक कार्य करो, वही स्वतंत्रता है। और जीवेरे स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास बनना है, कृष्ण से प्रेम करना है, उसी में आनंद है, उसी में स्वतंत्रता है, और वही जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी भक्ति साधना को दृढ़ कर सकूं। हरे बोल।